ਵਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰੂਬਾਣੀ ਆਈ ਮਾਂ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀ ਹੋ ਤਥਾ ਮੁਕਤ ਭਾਈ ਹੋ ਬਾਟੀ ਹੋਈ ਆਜ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਭੀ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਦਿਲਾਰਾਮ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੀ ਆਪ ਲੋਗ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਭੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸੰਕਲਪ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਸਬਕੋ ਦੇਖਤੇ ਰਹਿਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਸਭੀ ਹੋ ਲਗਨ ਵੀ ਸਭ ਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰਾਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਸਭ ਕਾ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਦਮ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਤੀ ਮੇ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀ ਸੇ ਬੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੋਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾ ਵੀ ਉਮੰਗ ਉਤਸਾਹ ਸਭੀ ਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਔਰ ਸਹਿਜ ਉਸਮੇ ਅੰਤਰ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਦਾ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਹੋ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾ ਸਦਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਕਿਨਕੋ ਹੋਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੋ ਕੋ ਯਾ ਇਮਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੋ ਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਪੜੇ ਹੋਗੇ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਕੋ ਸਹਿਜ ਯਾਦ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਕਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਗਾ ਸਾਥ ਕੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਛੁੜਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇ ਸਾਥ ਹੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਿਲ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇ ਸਾਥ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਵੀ ਸਹਿਜ ਯਾਦ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਬ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ ਯਾਦ ਤੋ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ ਯਾਦ ਤੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਮੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀ ਅਰਥਾਤ ਮਦਦਗਾਰ ਬਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋ ਸਾਥ ਮੇ ਲੇਕਿਨ ਮਦਦਗਾਰ ਤੋ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਮੇ ਤੋ ਨਾ ਹੋ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਸੇ ਭੁੱਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੋ ਹਰ ਕਰਮ ਮੇ ਬਾਪ ਕਾ ਸਾਥ ਸਾਥੀ ਰੂਪ ਮੇ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰਮ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ सन्यासी लोग कौन सी बात कठिन समझते हैं? घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने को बहुत कठिन समझते हैं, और जो दुनिया और सन्यासी कठिन समझते हैं उस कठिन बात को भी परमात्मा का साथ सहज और निरंतर बना देता है। तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है, और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। साधारण रीति नहीं, असाधारण बात को भी असाधारण रीति से मुश्किल को सहज करने वाला है। तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा दो बानवे का प्रातिक गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। शिव की जयंती कब होती है? वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं? ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थम का जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं? भारतवासी नहीं जानते तो कि तुम बच्चे क्या भारतवासी नहीं हो क्या? है तुम बच्चे जानते तो हो लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जाते हैं रात्रि को अवतार लिया परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कामन रात दिन होते हैं वो रात्रि? वह और कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। सामान्य रात्रि तो होती रहती है, रोज होती है, और हर युग में होती ही आई है। के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे रख दिया है। इसके बदले कृष्ण का रात्रि के 12 बजे जन्म क्यों रख दिया? कृष्ण को भगवान समझ लिया, समझते हैं कृष्ण भगवान रात को दिन बनाने आते होंगे। शिव को मानते हैं परंतु कब जन्म लेते हैं ये नहीं जानते। शिवरात्रि सबसे बड़े से बड़ा दिन सबके लिए है, ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासियों के लिए है, क्योंकि यह पर्व का सदगति दाता है। वह है ही सर्व का सदगति दाता। जब सब के ऊपर भीड़ पड़ती है, भीड़ मानो आपदा, तब चिल्लाते हैं ओ पतित पावन आओ। गॉड फादर रहम करो, कब की बात है? संगम डिग्री में तो सब कहाँ चिल्लाते हैं, जैसे वो तो काम करके चला गया, तो नई दुनिया हमें स्थापन करनी है, तो बुलाने की दरकार कहाँ रह गई है? तो संगम की कहाँ बात है? द्रौपदी की बात है कि संगम युग में जब कलयुग की शूटिंग होती है और कलयुग की शूटिंग की भी जब चौथी अवस्था होती है तब बहुत जोर से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय होता है भीड़ का समय, भीड़ पड़ती है, बहुत आपदाएं आती हैं, क्योंकि राजधानी उस समय स्थापन होती है। एक तरफ राजधानी की स्थापना और दूसरी तरफ विनाश के नजारे। तो जब सबके ऊपर बहुत भीड़ पड़ती है तब चिल्लाते ही प्रतिष्ठा बनाओ, एक गॉड फादर रहम करो। कौन कहते हैं गॉड फादर? विदेशी लोग पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर, इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो, ये एक दो के मारने के लिए तैयार हो गए, एटम बम छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई की सुनते भी नहीं, उन्हों को ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। तो भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, कह देते हैं भगवान निराकार है। मत देने वाला भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। जब निराकार है, उसका नाम रूप देश काल आकार है नहीं, तो फिर सर्वव्यापी भी है, ऐसे समझ लेते। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं, क्या था साधारण ब्रह्मा के तन में? साधारण ब्रह्मा का तन, और ब्रह्मा का असाधारण तन भी होता है, है? ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो चित्र कैसे बना दिया है? चित्र नहीं बना है, चित्र तो बनाया है, क्या चित्र बनाया है? विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो कमल का मतलब है कमल फूल समान जैसी जीवन, और उसकी पैदाइश हुई ब्रह्मा। तो भारतवासी स्थूल चित्र तो बनाते हैं लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। दादा का चित्र देख करके मुझसे समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है, नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता क्या? तो नाभि से तो नहीं होता, नाभि में क्या होता है? नाभि में सारे शरीर की नस नाड़ियां 16,000 नस नाड़ियों का केंद्र होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि काट दी जाती है, नाभि से उसका कनेक्शन कट हो जाता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ, नाभि से किसी का जन्म नहीं होता। अब विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को तो जानते नहीं है। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने संदेशों का साथ सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, भी नहीं हो सकता। बाप समझाते तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कान द्वारा सुन रहे, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। जो सबके सदगति दाता ज्ञान का सागर है, जो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे क्या भूल जाते हैं घड़ी घड़ी है? यही खास बात भूल जाते हैं कि परमात्मा बाप हमको बैठ कर पढ़ाते हैं, वार्तालाप करते हैं। जिस सिवाय तुम्हारे किसी और बुद्धि में बैठ नहीं सकता, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। रिगार्ड न रखने का कारण क्या? यही बात बुद्धि से खिसक जाती है। साधारण मनुष्य तन को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देखते, नहीं देख पाते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, लगातार बुद्धि इसी तरफ लगी रहे। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है, जानते हो जन्म जन्मांतर महाश्री संप्रदाय से फालतू बातें सुनते आए। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। क्यों पाती रहूं? आधा समय ज्ञान, कितना समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, कितना समय भक्ति, ढाई हजार वर्ष भक्ति, ढाई हजार वर्ष ज्ञान। देवताओं में ज्ञान होता है, देवताओं में ज्ञान होता है ना, फिर कैसे है? ऋषि चक्र का चित्र नहीं सुना क्या? क्या किया अजय भाई है? क्या अरुण भाई, ऋषि चक्र का चित्र नहीं सुना? सुना तो बताओ कि आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, आधा समय ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन, हाँ ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सत्य उत्तरेता द्वापर कलयुग में तो ब्रह्मा होता ही नहीं, तो सत्य उत्तरेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात, वहाँ ढाई हजार वर्ष की तो बात है ही नहीं। ये तो सूफी पीरियड की बात है, जब ज्ञान सूर्य परमात्मा साकार में प्रत्यक्ष होता है, जब बैठ करके समझते हैं कि परमपिता परमात्मा हमको प्रैक्टिकल में पढ़ाए रहे हैं, तो सहज याद और निरंतर याद लग जाती है, क्योंकि सन्मुख है। तो उस समय होता है ब्रह्मा का दिन, और जब वो साकार स्वरूप में परमात्मा गुप्त हो जाता है, वानप्रस्थी हो जाता है या गुप्त हो जाता है, यदि छुपेगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा भी अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते। तो यहाँ शूटिंग पीरियड की बात है, 5-4 वर्ष का ड्रामा, ये 50-60 वर्षों में, 70 वर्षों में शूट होता है, उसकी शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो उस समय की बात है, तो ये एक बात कभी भूलो नहीं। क्या बात नहीं भूलो? कि हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान पर। अगर ये एक बात भूल गए तो समझ लो ज्ञान सूर्य के प्रकाश से कहाँ पहुंच गए? अज्ञान अंधकार में पहुंच गए। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये कामन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। क्या था? तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ना भी जरूरी है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं, फलाने फलाने गफलत करते हैं क्या? और बातों में ध्यान जाएगा, बुद्धि जाएगी, आंखें जाएंगी, टहलेंगे घूमते फिरेंगे, लेकिन जो असली बात है उसमें बुद्धि टिकेगी नहीं, गफलत करते। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, नाम भी आगे चल के बताते जाएंगे। रेगुलर पढ़ते नहीं है तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोग ही है, नापास क्यों हो जाएंगे? क्योंकि विनाशी धन के लोग ही है। बंदर किस बात का लोभी होता है? भूंगरे डाल दो और लाखों रुपए के रतन डाल दो, चमकीले चमकीले, हीरे पन्ने जवाहरात मूंगा मोती पन्ना माणिक वो क्या पकड़ेगा? घूंगरा मुट्ठी से नहीं जोड़ेगा। उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्होंने पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। उनको अविनाशी ज्ञान रत्नों का तो कदर ही नहीं है। क्या कहा? गवर्नमेंट किसकी पिछाड़ी पड़ी हुई है? हैं? हाँ, ये तो हद की बात हो गई और हद के धन की बात हो गई, फिर बेहद की बात उठा है। गवर्नमेंट की नहीं पिछाड़ी पड़ी हुई है? यही कुछ बुलाते हैं। अच्छा, उनके पास बेहद का धन है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान धन है, देखते हैं कि ये बहुत कमाई कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि ज्ञान की कमाई बहुत ज्यादा लग पड़ी है, तो फिर उनके पीछे वो गवर्नमेंट लग जाती है। क्यों पापी राम, तुम्हारे पीछे बुद्धि की गवर्नमेंट लगी हुई है कि नहीं? लगी हुई है, सीआईडी से बचे हैं ना। ऐसा ना वो पकड़ ले, तुम्हें निकाल ली कुल दे। अरे बहुत पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने की पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर जब लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की क्या हालत है, हैं? बाप समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसे मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी है हम पतित हैं, फिर ये अपनी मृत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी होंगी, मेले सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेज कितनी हो गई होंगी, हैं? बहुत हो गई, कुछ घर पे निकला हैं? कौन करते हैं? हैं? सन्यासी करते हैं, सर्व सन्यासी पीले कपड़े वाले, फिर कपड़े वाले हैं? कपड़े वाले क्या मतलब? क्यों पाती राम, ये मेले सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आदि कौन करते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमार? अरे अरे नहीं, झूठे ब्रह्मा कुमार कुमारी कही होती तो बात भी ठीक है। हाँ, झूठे ब्राह्मण करते होंगे इनका धंधा। हाँ, सच्चे ब्राह्मण तो जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस से कुछ खर्चे निकलने वाला है नहीं, सिवाय एक परम पिता परमात्मा बाप के आए सुख शांति दुनिया स्थापन हो न सके। धर्म वाले आपस में न लड़े, ऐसा हो कैसे सकता? कॉन्फ्रेंस से एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, अब उनको मन से कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निर्धन के ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तो निर्धन के हुए या धनी के हुए? निर्धन के हुए, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। मालिक मानो, मालिक मैंने काहे का मालिक है? हाँ विश्व का मालिक सारी दुनिया का रचयिता, रचयिता ही मालिक होगा। तो अगर उसको मानते हो तो उसे जानना भी चाहिए। भगवान ईश्वर गॉड ये सब नाम भिन्न भिन्न रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, इसी को रचा जाता है, है? जो चीज अनादि होती है उसको रचा जाता है, ये जो चीज अनादि नहीं होती है उसको रचा जाता है। अनादि आत्मा उसको रचा जाएगा नहीं? हाँ मनुष्यों की रचना होती, मनुष्य सृष्टि की रचना होती है। कौन रचते हैं? हम परमपिता परमात्मा की फैमिली है। फैमिली हम किसकी है? परमपिता परमात्मा की फैमिली तो बहुत ऊंची होगी। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली तो हो नहीं सकती, जब सबके अंदर व्यापी है और एक व्यापी है नहीं, क्या सबके अंदर व्यापी, सबको प्रेरणा अंदर अंदर मिल रही है। बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिया तो फिर सर्वव्यापी हुआ, एक व्यापी हुआ फिर तो सर्वव्यापी हो गया। बाबा मुरली में कहते हैं मैं किसी को प्रेरणा देता ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल में आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ, प्रेरणा देने की क्या बात, प्रेरणा से कोई पढ़ाई होती नहीं। तो हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है, बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली नहीं हो सकती। मालिक रचयिता की हम फैमिली है। आज से 5-4 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर बरता दिया था, न सिर्फ हमको परंतु सबको देते, ऐसे नहीं सर्वव्यापी होकर के देते। क्या सर्वव्यापी नहीं होकर देते हैं, लेकिन एक है? एक व्यापी होकर देते हैं, एक मुकर में प्रवेश करके वर्षा देते हैं। उन्होंने तो सर्वव्यापी समझ लिया, हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। क्या हमको जीवन मुक्ति का क्यों देते हैं? बाकी ने क्या गड़बड़ किया जो उनको सिर्फ मुक्ति का वर्षा देते हैं? हाँ, उन्होंने यही गलती कर दी कि परमात्मा जब प्रैक्टिकल में आता है तो भी उसे सर्वव्यापी समझ लिया, एक व्यापी नहीं पहचान पाया, ये नहीं पहचान पाया कि परमात्मा किसी जीवन में है, परमात्मा भी शरीर से जीवित होकर के कार्य कर रहा है। आत्मा अगर शरीर में न हो तो जड़वत हो गई ना, चैतन्य तो नहीं हुई, क्योंकि बिना शरीर के तो आत्मा कुछ काम कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने परमात्मा को जीवन से जुदा कर दिया, तो परमात्मा ने उनको जीवन मुक्ति से जुदा कर दिया। तो हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा। तो कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्या कहा? किस बात का? कि हमको जीवन मुक्ति मिलती है क्योंकि हमने जीवन में आए परमात्मा को पहचान लिया और उन्होंने जीवित परमात्मा को नहीं पहचान पाया। बस किसको याद करते हैं? बिंदु। अब बिंदु बिंदु तो 500-600 करोड़ आत्मा ही नहीं, दुनिया के कीटे पर तो पक्षी पतंगे सब बिंदु है, क्या अरबों खरबों? अब उनमें कौन सी बिंदी परमात्मा है, कौन सी बिंदी की याद करते, कैसे पता पड़े? बुद्धि भटक जाएगी, یہ ایک ٹھکانے رہے گی. تو یہاں تو کتنا سہج ہے, جب سہج ہے تو نرنتر بھی یاد ہو سکتی ہے. تو یہ بھی خوشی کا پارا چڑھنا چاہیے. پرنتو اہو مم مایا, یہاں سے باہر جاتے ہیں تو مایا بلائے. کہتے ہیں اہو مم مایا, کس کی مایا؟ مم مایا کس نے کہا؟ بابا نے کہا میری مایا بیٹی. باپ کو بھول جاتے ہیں. ابھی تم باپ کے بنے ہو تو تم ہی جانتے ہو شیو بابا نے برہما دوارا ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے. کیا کہا بابا کو منع کا نہیں کرتے؟ آئے جب تمہیں نام منع کر سکے تمہیں ہی نام مانتے تو مایا کو کیوں منع کر دے؟ تم مان جاؤ تو مایا کو بھی منوائے دے. تم کہاں مان جاؤ؟ ہندو بولتے. اب رام کماری بھی بول رہے ہیں سب معلوم کر. باپ کو ہی بھول جاتے ہیں. ابھی تم باپ کے بنے ہو تو تم ہی جانتے ہو کہ بابا نے برہما دوارا ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے. اس کے دوارا ایڈاپٹ کیا ہے. تم جانتے ہو کہ شیو بابا نے برہما دوارا ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے. کیا؟ کہ برہما کمار کماریوں دوارا ایڈاپٹ کیا ہے. کیوں پاتی رام تم نے برہما دوارا ایڈاپٹ کیا ہے. دوارا کون ہے؟ میڈیا کون ہے؟ اب تو بری آپ ہے تو بھیا, اب تو بیٹی باپ ہے کی کہا صحیح کنا کو پکڑ کے. ابھی تم باپ کے بنے ہو تم ہی جانتے ہو شیو بابا نے برہما دوارا ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے. تم جانتے ہو وہ نہیں جانتے. کیا کہا؟ تم جانتے ہو کہ باپ نے ہم کو برہما دوارا ایڈاپٹ کیا. ایڈاپٹ کرنا مانا ہاں سویکار کیا ہے, اپنا بنایا ہے. ایسے نہیں کہ برہما وشنو کی نابھی سے نکلا. کیا؟ وشنو کی نابھی اتنی لمبی 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 اور پھر اس میں اوپر جا کر کے برہما نکلا. نہیں, اور اس برہما سے کوئی ہم پیدا ہوئے اور ونشاولی چلی آئی. یہ بھی چتر رکھنا چاہیے. کیا؟ کہ لمبی لمبی کوئی ونشاولی نہیں چلتی ہے یہاں سنگم یگ میں. سنگم یگ میں تو باپ پریکٹیکل برہماتن دوارا بچوں کو براہمن بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ برہما نے برہما کماروں کو گیان دیا, پھر برہما کماروں نے دوسروں کو گیان دیا, پھر انہوں نے ان کو گیان دیا تو سب برہما مکمن سلجی ہو گئے. پھر کیا ہوئے؟ تو برہمن برہمن ہی مکمن سلجی ہوئے. برہما مکمن سلجی کہاں ہوئے؟ کیوں پاتی رام تم کس کے مکمن سلجی ہو؟ کہاں ہے برہما؟ جب ارے آپ تو کہتے آپ تو نہ آئے گڑی گڑی گرگٹ کی رنگ بگت. کیا صحیح؟ جب سیزا کو محل ہوا ہے جہاں کوئی چھپ نہیں سکتا. پھر ہاں جو یاد دیکھیے ہو ہاں باپ ہے سب سے بڑا درپن, اور تو چھوٹے چھوٹے درپن ہیں ان میں تو چہرہ دکھائی پڑے نہ پڑے لیکن ابھی تم باپ کے بنے ہو تم ہی جانتے ہو شیو بابا نے برہما دوارا ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے. کس کے دوارا ایڈاپٹ کیا ہے؟ برہما دوارا. ایسے نہیں کہ برہما وشنو کی نابھی سے نکلا. نابی تو کتنی لمبی دکھائی، بہت لمبی دکھائی، تو وہ تو بنساولی ہو گئی لمبی، کیا لمبی لمبی کیا ہو گئی، تو بنساولی کی بات نہیں ہے، دکھاتے ہیں گاندھی کی نابی سے نہرو نکلا، اب وشنو کی نابی سے برہما کیسے نکلے گا، تو کوئی سائنس دان بھی نہیں مانتے، بھلا آج کل انجیکشن آدھ سے بچہ پیدا کرتے ہیں، پرنتو وشنو کی نابی سے اتنا بڑا برہما کیسے نکلے گا، پھر وشنو کا ایسے نالج سناتے ہیں ویدوں کی، سو بھی کہاں، کیا سوکشم بتن میں، سوکشم بتن میں نالج سنانے کی کیا درکار، سوکشم بتن میں پوتر ہوتے ہیں پوتر ہوتے ہیں، تو جہاں پوتر ہوتے ہیں پوتروں کو کوئی گیان سنانے کی درکار، گندے کپڑوں کو گیان جل کی ضرورت ہے، یا جو شدھ کپڑا ہے اس کو جل کی ضرورت زیادہ ہے، کیا سوکشم بتن میں گیان سنایا، کچھ بھی بدھی میں بیٹھتا نہیں ہے، جن کو باپ سے ورثہ لینا ہے وہ تو یہ سب باتیں سمجھتے ہیں، کیا سوکشم بتن واسی میں کوئی شو بابا نہیں آتے، اور نہ کوئی سوکشم بتن میں آ کر کے گیان سناتے ہیں، سب باتیں بچے سمجھتے ہیں، باقی سب کہہ دیتے ہیں یہ تو کلپنا، اب بچے تو مانتے ہیں برابر بابا سچی سناتے ہیں، اور تم براہمنوں کو پھر جا کر سب کو سچی گیتا سنانی ہے، جھوٹی گیتا کون سی ہوتی ہے اور سچی گیتا کون سی ہوتی ہے، ہاں بھکتی ہوتی ہے بعد میں، پہلے ہوتا ہے گیان، گیان آتا ہے پرماتما سے، ایک پرماتما سے آتا ہے گیان، اور باقی سب سے آتی ہے بھکتی، تو جب پریکٹیکل میں پرماتما باپ بیٹھ کسی مقرر دوارا گیان سناتے ہیں تو ہوتی ہے سچی گیتا، پھر اس کے بعد بعد میں ہوتی ہے جھوٹی گیتا، تو یہ نمبر بار راجدھانی بن رہی ہے، سب ایک جیسا پڑھ نہ سکیں، دھارنا کر کے پھر اس پر وچار ساگر منتھن کرنا ہے، سنا نوٹ کیا پھر بیٹھ کر کے اس پر خیال کرنا چاہیے، آج بابا نے کیا کیا سنایا، سب اٹھ کر غور کرنا چاہیے، تم کو سب پر ترس پڑنا چاہیے، بابا کا فرمان ہے اپنی رچنا استری بچوں کو بھی سمجھاؤ، ایسے نہیں دوسروں کو جا کے سمجھاتے رہو اور اپنے بیوی بال بچے دکھی ہی بنے رہے اشانتی ہی بنے رہے، رچنا رچتے ہیں اپنے سکھ کے لیے، دیہد کا باپ خود سکھ نہیں بھوگتے، کہتے ہیں بچوں کے لیے ساری محنت کرتا ہوں، کیا سورج کی محنت، سورج کی رچنا کی محنت کس کے لیے کرتا ہوں، بچوں کے لیے، سب 33 کروڑ دیوتائیں کہاں دکھائے گئے سورج میں، اور شنکر جی مہاراج کہاں دکھائے جاتے ہیں چتروں میں، وہی کانٹوں کے جنگل، یہ ساری محنت کرتا ہوں بچوں کے لیے، تو جب دھارنا ہو تو نشا چڑھے، تب کس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں، بابا کے مثل رحم دل بننا ہے، آسری مت سے سب کو چھڑانا ہے، کیا جو آسروں کی مت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھڑانا ہے، अभी कह रहे हैं कि अपने बीवी बाल बच्चों की, अपने घर वालों की सर्विस करना है। आप भी कहते हैं आसुरी मत में जो फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना, ये क्या बात हो गई है? कौन? हाँ, आसुरी मत में कौन फंसे हुए? अपने ही ब्राह्मण परिवार के, अपने ही घर के भांति जो है, जो बाबा के बच्चे बने, वो कहाँ फंस गए? आसुरी मत में फंसे हुए, तो उनको उनसे छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। छोटी मोटी दुश्मनी नहीं है, भारी दुश्मनी है। यह है रावण राज्य और वो होगा राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पतित कौन बनाते हैं और पावन कौन बनाते हैं। क्या मनुष्य नहीं जानते हैं कि व्यभिचारी कौन बनाता है और अव्यभिचारी कौन बनाता है? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी बाप ही समझाते हैं। हिस्टोरियन जिनको इनाम मिलता है, इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉडफादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी बैठ तुम आते हैं, सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। क्या सारी दुनिया की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी बैठ सुनाते तो हैं और सुनने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। वास्तविक चित्र अंधों के आगे आए ना है, झाड़ और ड्रामा वो तो बहुत क्लियर है। ये बाप ने समझा कर बनवाए। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए, तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े, बुद्धि सब फिर चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम स्वच्छ बुद्धि किसे कहेंगे? इस पुरानी दुनिया से जिस जो बुद्धि उपराम हो वो हुई स्वच्छ, और इसी दुनिया में लगी पड़ी रहे तो हो गई अस्वच्छ। जब इस दुनिया में नहीं लगेगी रहते तो इस दुनिया में, और बुद्धि इस दुनिया में लगेगी नहीं तो कहाँ लगेगी? हाँ, नई दुनिया की याद में लगे। नई दुनिया कैसे आएगी? उसके मनन चिंतन मंथन में लगे, सुबह से लेकर के शाम तक बुद्धि में यही मनन चिंतन मंथन चलता रहे तो समझ लो बुद्धि स्वच्छ है। यह स्वच्छ होने के रास्ते पर है, गति हो रही है बुद्धि की, क्योंकि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति, फिर शरीर की गति सदगति। तो ये भी बंदर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही बाप आकर के बैठे। क्या बंदर है? जड़ यादगार कहाँ है पापीराम? यही कहाँ जड़ यादगार कहाँ है? संगम, संगम संगम का तो समय है, हम स्थान पूछ रहे हैं कि जड़ यादगार कहाँ है तपस्या का। अरे हम स्थान पूछ रहे हैं तो तुम, हाँ ये भी बंदर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर के बैठे हैं, दूसरी जगह आकर के नहीं बैठे हैं। तो कहाँ यादगार है जड़? जड़ यादगार मंदिर को कहा जाता है, तो कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर, तो वहां आकर के बैठे हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। तो माउंट आबू में आकर बैठे हैं। क्या जल्दी जल्दी बताओ पातिरम, फिर आगे बढ़े। ये भी बंदर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां यादगार के बैठे। वो जड़ यादगार है और ये चैतन्य में बैठे। क्या कहा? बैठे हैं चैतन्य में, उसमें जड़ यादगार कहाँ है? हैं? जड़ यादगार कहाँ है? तपस्या का। जल्दी जल्दी बताओ, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। बैठे कहाँ है? रुक जाओ, कहाँ बैठे? अरे क्या बात हुई? ये पातिराम झूठ मत बोलना, तुम सच्चा बोलना, ये सबको झूठ बोलने दो। हाँ, तो अपने दिल की बात बोलो, सच्चे दिल पर साहब राजी। हाँ बोलो, बताओ। बाबा ने बोला जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां ही याद करके बैठे। वो जड़ यादगार है और ये चैतन्य में बैठे, तो कहाँ यादगार है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में। तो कहाँ आकर बैठे? ये कोई बात हुई? यहाँ तो ये कहा कि जहाँ जड़ यादगार है वहां आकर के बैठे है। जब माउंट आबू में जड़ यादगार है तो माउंट आबू में आकर के बैठना चाहिए। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर के बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं। मुरली में क्या बोला? मत बोलो तुम, उल्टा उल्टा बोलते हो फिर। हाँ बोलो। हाँ, वहां आकर के बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं आकर के बैठते हैं। कहाँ बैठे हैं? जड़ यादगार कहाँ है? हैं? क्या बुझ गए क्या? हाँ तो बताओ, फटाफट बताओ, कहाँ जड़ यादगार है? अरे जड़ यादगार माउंट आबू में है ना, तपस्या में मूर्तियां बैठी हुई है, याद में बैठी हुई है, तो वहां जड़ यादगार है ना, अब तो वहीं आकर के बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अरे तो कहाँ बैठे हैं? बाप आकर के हैं? तो माउंट आबू गए कि नहीं गए? तो कहाँ जाकर के बैठे हैं? हैं? हाँ, सुख शांति भवन में बैठे ना। अच्छा, तो वहाँ बाप, बाप का यादगार है ना, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ आकर के बैठे। वो जड़ है, ये चैतन्य है, तो वहाँ चैतन्य में बाप हुआ ना। हाँ कहाँ? माउंट आबू में। वहां चैतन्य में बाप को देखा? अरे तुम बोलो ही नहीं, चैतन्य में वहां बाप को देखा या नहीं देखा? जोर से बोलो तो टैप में भर जाए। हैं? वहां चैतन्य में नहीं देखा? अरे तुम्हें चैतन्य में बाप नहीं मिला? हैं? बिना बाप के ब्रह्मा कुमार बन गए? अरे तुम तो बहुत मुझ गए, क्या बात हो गई? हैं? कहाँ है फिर चैतन्य में बाप? कहाँ है? हैं? कहाँ मिला?
सामने।
तो सामने वो स्थान कौन सा है? उस स्थान का नाम क्या कहा जाता है? कंपिल? और जल यादगार कहाँ है? बाबा ने, तुम उसी बात बोलते हो, ये तो झूठी बात हो गई। बाबा ने बोला जहाँ अपना जड़ यादगार है वहीं आकर के बैठे हैं। हाँ, अब नहीं बता पा रहे। अच्छा बड़ रुको, किसी माता से पूछते हैं। हाँ सोमा माता बताओ, यहाँ पर है जड़ यादगार? कहाँ? कंपिल में। कंपिल में कहाँ जड़ यादगार है? 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 बताती क्यों तू? हाँ कहाँ जड़ यादगार है? कहाँ है जड़ यादगार? मैं दिखाऊ? तुमने कभी देखा? जब देखा नहीं तो क्यों कहते? किसी ने झूठ बता दिया होगा। कहाँ है यह जड़ यादगार है? अच्छा त्रिपुर सुंदरी माता बताएंगे, अपना शरीर जड़ है वो यादगार है। अरे ये तो भाई बात नहीं बन रही है। अच्छा और वो सुभद्रा माता बताओ। सुभद्रा माता, पातिराम भाई तुम बुझ गए, कहते हैं जड़ यादगार माउंट आबू में, हम बाप के सन्मुख यहाँ कंपिलम में बैठे, कैसी उल्टी उल्टी बात हो गई? हल करो, कहाँ है जड़ यादगार और कहाँ बैठे हैं? सुभद्रा माता जल्दी बताओ, हैं? कुछ नहीं हैं? हैं? कंपनी में बैठे तो कंपनी में जरा यादगार कहाँ है? तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम बोलती क्यों? जैसे कलयुग टीचर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को खूब एग्जामिनेशन बताते रहते हैं। हाँ, नहीं अच्छा वो सबसे नया स्टूडेंट गीता बहन। हाँ बताओ कहाँ बैठे और कहाँ जड़ यादगार? चैतन्य में बैठे हैं सन्मुख। अच्छा चैतन्य में सन्मुख बैठे हो हैं? अच्छा तो जड़ यादगार कहाँ है? वाह ये क्या बात, बाबा तो कहते हैं जहाँ तुम्हारा जड़ यादगार है वहाँ तुम बैठे हो। अच्छा पार्वती माता बताएंगे। हाँ ठीक है। हाँ है मन मंदिर आत्मा ही है जड़ मंदिर, तो मन 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 जड़ होता है कि चैतन्य होता है? तो वो तो मन चैतन्य होता है या जड़ होता है? तो मन ही मंदिर होता है तो मन जड़ है या चैतन्य है? मन चैतन्य है, यहाँ तो जड़ मंदिर की यादगार की बात है। हाँ जहाँ तुम बैठे हो वो जड़ यादगार है वहाँ, और वहीं तुम बैठे हो। हाँ बाप के चलो। हाँ तो कहाँ जड़ यादगार है? यहाँ तो जड़ यादगार नहीं है। हम पूछ रहा है तुमसे मालूम है जब गुरुवाड़ा मंदिर बना ही नहीं, यादगार में क्या होता है? जोर जोर से बोलो है क्या? माउंट आबू की यादगार है तो माउंट आबू हद का और बेहद का क्या होता है? माउंट आबू एक तो हद का होता है एक बेहद का। बेहद का माउंट आबू माउंट माने पहाड़, और आबू माने जहाँ दुनिया की सारी बदबू पतित आत्माएं आकर के इकट्ठी पहाड़ बन के इकट्ठी हो जाए, वो हो गया काय का पहाड़। सारी बदबू जैसी भरी हुई आत्माओं का पहाड़ इकट्ठा हो गया। क्यों? भगवान जहाँ आते हैं वहाँ बदबू का पहाड़ पतित आत्माओं का पहाड़ क्यों इकट्ठा करते हैं? है? पावन बनाने के लिए है। तो वो हुआ माउंट आबू। क्या बिल्कुल सदगति वहाँ पर पहले मन बुद्धि की सदगति होगी कि पहले शरीर की सदगति होगी? पहले मन बुद्धि की सदगति होगी क्या, इसलिए बोला तुम्हारे ऐसे गंदे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, पहले तुम्हारे गांव को आकर के क्या बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ, फिर दुनिया को बनाता हूँ। तो जहाँ जड़ यादगार मंदिर वहाँ जड़ यादगार मंदिर जरूर होना चाहिए तपस्या का। तो दो तरह की मूर्तियों का मंदिर है, एक सफेद मूर्तियों का जो तपस्या में बैठी है और दूसरी काली मूर्तियों का। काली मूर्तियां ज्ञान में तो चलती हैं लेकिन काले कर्म करती हैं, काला मुंह जरूर करेंगे। तो वो काली मूर्तियों का मंदिर वो ऊंची स्टेज में दिखाया गया है, वो मंदिर ऊंचा है, वो बड़े दिलवाड़ा मंदिर में भी, तो यहाँ छोटा दिलवाड़ा मंदिर है यादगार में, यहाँ भी दिखाया गया।